आरवी मुस्कुराते हुए उनकी ओर आई। यहाँ आकर भी ना मिले, ऐसा थोड़ी होगा दादाजी। आरवी ने उनके पैर छुए और फिर हाथ जोड़ते हुए कहा, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, हमेशा खुश रहिए। दिनकर जी ने आरवी के सिर पर प्यार से हाथ रखा। फिर आरवी ने वर्तिका की ओर देखा और उसकी ओर आकर हैप्पी होली कहकर गले मिली। वर्तिका ने भी आरवी के गाल छूते हुए हैप्पी होली कहा। तभी आरवी ने उसके सूट की ओर देखकर अभी की ओर देखते हुए कहा, जितना सोचा था उससे भी प्यारा लग रहा है सूट। ये सुन वर्तिका थोड़ा शर्माते हुए हंसती। तभी दिनकर जी ने विनित को बैग उठाकर देने को कहा। विनित ने आरवी और अभिनव को पुकारा और बैग उठाकर दिनकर जी को दे दिए। दिनकर जी ने दोनों की ओर बैग बढ़ाते हुए कहा, होली के तोहफे मेरे इन बच्चों के लिए भी। ये सुन आरवी और अभि ने एक दूसरे की ओर देखा। तब विनित बोला, हमें भी दिए हैं दादू ने, ले लो, दादू का प्यार और आशीर्वाद है इन तोहफों में। वर्तिका ने कहा, हाँ, और दादू के गिफ्ट बहुत ही प्यारे और सरप्राइजिंग होते हैं, जब हम सब खोलेंगे तो पक्का सरप्राइज होंगे। अभी और आरवी ने तोहफे लेते हुए थैंक यू कहा। तभी रामू काका और राधे वहाँ आ गए। अभी और आरवी ने उनको भी हैप्पी होली कहा और उन दोनों ने भी शुभकामनाएं दी। रामू काका बोले, विनित बाबा खाना लग गया है। राधे बोले, आइए आप सब। विनित बोला, हाँ हाँ चलिए, पहले कुछ खाते पीते हैं और फिर होली पार्टी शुरू करेंगे। दिनकर जी बोले, हाँ चलो बच्चों। तभी आरवी बोली, ओह तेरी, मैं अपना फ़ोन तो गाड़ी में ही भूल गई और गिफ्ट्स भी, अभी आई। आरवी वहाँ से भागकर चली गई। अभी बोला, पहले घर पर भूली दोनों चीज़ें, फिर अब गाड़ी में, ये आरवी भी ना। ये सुन सब हंस दिए और डाइनिंग टेबल की ओर चल दिए। आरवी ने गाड़ी से अपना फ़ोन लिया और पीछे की सीट से दो बैग निकाले। ये अभी किसी काम का नहीं, वर्तिका और विनित जी के लिए होली के तोहफे लाई। गाड़ी से लेना तो दूर, याद दिलाना भी याद नहीं रहा इसको तो। याद रहेगा भी कैसे, सारा ध्यान तो इसका आज इसकी मैडम पर है। मुस्कुराते हुए, इतना कह आरवी ने मुस्कुराते हुए गाड़ी बंद की और फ़ोन और दोनों बैग ठीक से पकड़ते हुए हाथों में संभालते हुए वहाँ से जाने लगी कि तभी साइड से आ रहे अयांश से जा भिड़ी। आरवी का भिड़ना और अयांश का उसके भिड़ने पर धक्का लगने के साथ ही मुड़ना, दोनों ने अपना बैलेंस खो दिया। अयांश के हाथ से उसका फ़ोन और आरवी के हाथ से दोनों बैग और फ़ोन छूटकर गिर गए। वे दोनों भी गिरते गिरते पर दोनों ने खुद को संभालने के लिए एक दूसरे की बाजुओं का सहारा ले लिया। चंद पलों में ही दोनों संभलकर सीधे खड़े हो गए, पर दोनों के हाथ एक दूसरे की बाजुओं पर अभी भी मौजूद थे और निगाहें भी टिकी थी एक दूसरे पर ही। अयांश एकटक आरवी को देखे जा रहा था, वो भी बिना पलके झपकाए, मानो आरवी को देख वो खो गया हो। इस पल का ही तो इंतजार था अयांश तो, कि कब उसका पसंदीदा चेहरा उसके सामने आए और वो उसे देखे। तभी आरवी ने अयांश से अपनी नज़रें हटाईं और उसे थोड़ा घूरकर अपनी बाजुओं की ओर देखा, जिन पर अयांश के हाथ थे। तभी आरवी अपने कदम पीछे ले लेती है और थोड़ा जोर से बोलती है, आप भी हैं यहाँ। अभी आंखें ही तो देखी थी अयांश ने कि आरवी की आवाज़ से अयांश की तंद्रा टूट गई। उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ और वो खुद को काबू में रखते हुए आरवी से अपनी नज़र हटाकर नीचे से अपना फ़ोन उठाने लगा। क्यों, मैं नहीं हो सकता यहाँ? आरवी ने अपने दोनों बैग और फ़ोन उठाया और उसकी ओर देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, होली है मिस्टर मेहरा, जो कि त्योहारों में आती है, और जितना मुझे याद है आपको तो त्योहार पसंद भी नहीं। अयांश तलखी से बोला, बड़ी खबर है मेरी पसंद और नापसंद की तुमको, मुझे आपकी पसंद नापसंद से क्या। पर सच में आपका होली पार्टी में होना थोड़ा अटपटा लगा, पर इतनी भी ताज्जुब भरी बात नहीं, जो खुद अटपटे हों वहाँ कुछ भी अटपटा हो सकता है, राइट? इतना कह आरवी वहाँ से चली गई और अयांश अपनी आंखें मूंद कर मुस्कुरा उठा। आरवी सबके बीच चली गई, उसने विनित और वर्तिका को उनके गिफ्ट दिए और फिर सबके साथ खाने के लिए बैठ गई। तभी अभी बोला, तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लग गया ये लाने में? आरवी बड़बड़ाते हुए, तूफान आ गया रास्ते में। ये सुनते ही सब समझ गए कि वो अयांश की बात कर रही है। तभी विनित खुश होते हुए फट से बोला, आरवी तुम अयांश से मिली? ये सुन आरवी उसकी ओर देखते हुए बोली, आप इतना खुश होकर क्यों पूछ रहे हैं? कह तो ऐसे रहे हैं जैसे वो प्रधानमंत्री हो और मुझे उनसे मिलकर खुशी होती, और ये बात जानकर आपको खुशी होती कि मैं प्रधानमंत्री से मिली। विनित बोला, आरवी मैं बस पूछ रहा हूँ। आरवी बोली, मुझे नहीं पता था आपने उनको भी बुलाया है। विनित बोला, एक दोस्त को बुलाया दूसरे को ना बुलाऊं, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा बता भी दो, मिली ना तुम उससे? आरवी बोली, अब यहाँ है वो तो जाहिर सी बात है मिल ली। तभी वहाँ अयांश आ गया, ये मिलती कहाँ है, सीधा टकराती ही है। अयांश की आवाज़ सुन सबने अयांश की ओर देखा, जो आरवी की ओर देख रहा था। तभी आरवी बोली, हाँ जैसे खुद बड़ा देखकर चलते हैं आप। विनित हंसते हुए, ये सही बोला आरवी, ये भी तो टकराता है, वो एयरपोर्ट वाला सीन। विनित बोल रहा था कि अयांश को अपनी ओर देखता पाकर चुप हो गया और बात बदलते हुए बोला, अयांश आओ ना ब्रेकफास्ट कर लो हमारे साथ। वर्तिका बोली, हाँ अयांश आओ बैठो। अयांश बोला, नो थैंक्स। तभी दिनकर जी बोले, तो तुम अब जा रहे हो अंशु ऑफिस?
ये सुनते ही अयांश ने आरवी की ओर देखा, जो मजे से खाना खा रही थी। हाँ दादू, आपको छोड़ने आया था और वर्तिका से मिलने। दोनों काम हो गए मेरे, अब जा रहा हूँ। ये सुनते ही विनीत ने दिनकर जी का टेबल के नीचे हाथ हिलाया तो दिनकर जी बोले, अगर जाना जरूरी नहीं ज्यादा तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाना, सब है यहाँ, तुम भी रुकोगे तो अच्छा लगेगा। विनीत और वर्तिका ने भी अयांश को रुकने को कहा, पर अयांश खामोश, और सबको अयांश की ओर देखते देख आरवी बोली, जाने दीजिए ना दादाजी, काम जरूरी होगा, अपनों का क्या है, वैसे भी जाने वालों को कौन रोक सकता है, पैसों से मतलब हो जिनको, उनको परिवार कहाँ दिखता है, और आपका प्यार भी नजर नहीं आएगा, तो जाने दीजिए, हम सब ना होली एंजॉय करेंगे, किसी के ना होने से कोई कमी थोड़ी होने देंगे। टेढ़ी नजरों से अयांश की ओर देखते हुए, अयांश आरवी की बात सुनते उसकी ओर देख रहा था, बाकी अयांश और आरवी दोनों ओर। तभी दिनकर जी बोले, होली खेलने के लिए नहीं कह रहे बेटा, बस थोड़ी देर रुकने को बोल रहे हैं, यहाँ सब है, हमारा अंशु भी रहता हमारे साथ तो हमें बहुत अच्छा लगता, आप चाहते हैं रुकूं मैं यहाँ, तो रुक रहा हूँ दादू, आप बोल रहे हैं सिर्फ इसीलिए। आरवी की तरफ एक नजर देख अयांश ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए कि अयांश रुकने को राजी हो गया। तभी वर्तिका बोली, अब रुक रहे हो तो कुछ खा भी लो, आप सब खाओ। इतना कह अयांश वहां रखी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया, पैर पर पैर रखकर स्टाइल से, वो भी आरवी के ठीक सामने। पर जैसे ही आरवी ने उसकी ओर देखा तो अयांश ने अपना फोन निकाल लिया और उसमें देखने लगा। आरवी मन ही मन खुद से, इनकी अक्कड़ का कुछ नहीं हो सकता है मिस्टर अक्कड़चंद। वर्तिका अयांश की ओर देखते हुए, ये भी साथ खाता तो कितना अच्छा लगता ना। आरवी, तो आपको करेले रखवाने चाहिए थे ना, मनपसंद चीज ही नहीं तो बंदा खाए क्या। ये सुन सब हंस दिए, उनकी हंसी सुन अयांश ने सबकी ओर देखा तो सब चुपचाप खाने लगे। तो विनीत बोला, दी रुक रहा है इतना काफी, बाकी खाना पीना इसका जब मन होता है ना तभी करता है।
सब बातें करते हुए हंसते मुस्कुराते खाना खा रहे थे तो वहीं आरवी के सामने बैठा अयांश बार बार फोन से नजरें हटाकर उसकी ओर देख रहा होता है। चेहरे पर भले ही उसके कोई एक्सप्रेशन ना हो खुशी के, पर अंदर ही अंदर अयांश बड़ा खुश हो रहा था। जब भी आरवी की नज़र उस पर पड़ती और वो उसे घूरती तो अयांश वापस अपने फ़ोन में घुस जाता। भले ही दिनकर जी के कहने पर या आरवी के सुनने पर अयांश यहाँ रुक गया था सबके अकॉर्डिंग, पर असल बात तो वो अपनी मर्जी से रुका था, बाकी सब तो बस बहाने थे। उसे आरवी को जी भर कर देखना था, सिर्फ इसीलिए ही वो वहाँ रुका था। और ये बात अयांश के अलावा दिनकर जी और विनीत को भी पता थी। जहाँ अयांश को सिर्फ आरवी को देखना था यहाँ रुककर, वहीं दिनकर जी और विनीत दोनों चाहते थे कि अयांश यहाँ रुके और अयांश और आरवी की बात हो। तभी आरवी का फ़ोन बजा, वो फ़ोन उठाते हुए चेयर से उठी। मैं अभी आती हूँ, अभी ने इशारे से पूछा तो आरवी ने फ़ोन की ओर इशारा किया, घर से है। इतना कह आरवी वहाँ से चली गई। अयांश उसको जाते देख रहा था, तभी विनीत धीरे से दिनकर जी से बोला, सामने थी तो आराम से बैठा था, अब देखो उसको कैसे बेचैन नज़र आ रहा है, समझ नहीं आता, दूर रह नहीं पाता तो ये रह कैसे लेता है दादू। दिनकर जी मुस्कुराते हुए, ये खुद को और सबको कंट्रोल में रखने का हुनर रखता है, आरवी से दूर रहना इसके लिए आसान नहीं, साथ तो ये भी चाहता है पर काबू में रखे हुए है खुद पर, तो ज़रूर कोई वजह तो होगी ही ना। हाँ दादू, बस हम भी यही चाहते हैं इनकी दूरियाँ मिटे और साथ आएँ, उसके लिए आज इनकी बात भी हो जाए, विनीत बोला तो दिनकर जी मुस्कुरा दिए। तभी विनीत उठकर अयांश के पास आया और कंधा लगाते हुए बोला, कैसा लगा मेरी नई दोस्त से मिलकर। ये सुन अयांश ने उसे भौंय से कोड़ते हुए देखा तो विनीत मुस्कुराते हुए फिर बोला, अरे दोस्त मेरी है प्यार तेरा। अच्छा ये बता, अब रुक गया है, मिल भी लिया तो बात करेगा आरवी से, देख तुम दोनों यहाँ तो बात कर सकते हो ना। ये सुनते ही अयांश वहाँ से उठ गया, मुझे कोई बात नहीं करनी, इतना बोल अयांश वहाँ से चला गया। उसे जाते देख विनीत उठा और मुंह बनाते हुए बोला, ऐसे कैसे बात नहीं करनी, सामने होकर नहीं बात करनी, नहीं बात तो करनी पड़ेगी, मैंने इतनी मेहनत की यहाँ रोकने के लिए, दादू ने इमोशनल बातें बोली और ये तुम दोनों के लिए, ताकि सामने हो तो बात करो, बात करने से ही ठीक होता है सब, सोचा था ऐसा होगा, सामने ले आऊँ तो एटलीस्ट तुम आरवी से कुछ कहोगे बोलोगे, पर नहीं, तुमको तो जुबां पर ताले रखने हैं, पर ऐसा नहीं चलेगा, प्लान ए नहीं वर्क कर रहा तो प्लान भी रेडी है मेरे पास, दोस्ती मोहब्बत जंग में सब जायज़ है, मनमंद हंसते हुए। इतना कह विनीत डाइनिंग टेबल पर गया और एक जूस का गिलास उठाया और लेकर अयांश की ओर बढ़ गया। अयांश फ़ोन पर लगा था और विनीत की ओर उसकी पीठ की। थोड़ी दूरी पर विनीत रुक गया, उसने इधर उधर देखते हुए अयांश की ओर देखा। सॉरी यार, इसके अलावा तुमने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, कह विनीत ने अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला और उसे गिलास में डाला, जूस को हिलाया और मुस्कुराते हुए अयांश की ओर बढ़ते हुए बोला, अब देखता हूँ कैसे नहीं बोलता, आज तो तुम सब बोलोगे, ना भी बोलोगे तो ये भांग बुला देगी, दिल का हर राज आज तेरी जुबां पर होगा, तेरे प्यार से तेरा मोहब्बत इजहार होगा। क्रमशः